ओम शांति। ज्ञान सागर के गहराई में जितना ज्यादा जा सके वो स्थान है ही ये मधुबन। मधुबन के महान पुण्य आत्माएं जो दादियों के अंग संग, बाप दादा के अंग संग रहते हुए सदा तवा टू माउथ ज्ञान रत्नों को प्राप्त करने वाले, अनुभव करते हुए औरों को अनुभव कराने वाले हम सभी के बीच डॉक्टर सविता दीदी जी हैं। आपको बाबा का ईश्वरीय ज्ञान दिल्ली में प्राप्त हुआ और आपने ये निश्चय कर लिया कि डबल डॉक्टर बनकर सेवा करनी है, परंतु ऐसे नहीं कि कार्य व्यवहार करते हुए बाबा के यज्ञ में सेवा करते आप डबल डॉक्टर बनकर के रहे। 10 साल मतलब मधुबन में आपने सेवाएं दी, वैसे समर्पित यज्ञ में ही है पर दादी जी के साथ शांतिवन में आप रहते हैं, तो डॉक्टर होने के कारण पांडव भवन डिस्पेंसरी में भी आप सेवाएं देते रहे, ग्लोबल हॉस्पिटल में भी आपने सेवाएं दी और विशेष दादी प्रकाशमणि जी जिनके आप अंग संग रहते हुए डॉक्टर भी बन करके रहे, दादी जी के सेवा का विशेष भाग्य सविता दीदी जी को प्राप्त हुआ और महिला विंग की आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर है और तीनों ही स्थानों पर कॉन्फ्रेंस आदि होते हैं उसमें भी आप अपने अनुभव युक्त लेक्चर्स भी देते हैं, योग शिविर भी कराते हैं, देश विदेश में भी सेवा के चांस आपको मिले हैं और ब्राह्मणों का उमंग उत्साह भी आप बढ़ाते रहते हैं। तो आज हम सभी को सविता दीदी जी इस विषय पर प्रकाश देंगे या अनुभूति कराएंगे, हम विघ्न विनाशक कैसे हैं, विघ्न विनाशक स्थिति को कैसे धारण करें, क्योंकि एक शब्द हम ब्राह्मण सभी कहते हैं, विघ्नों का काम है आना और हमारा काम है विजय पाना या विघ्न विनाशक बनना। तो वो स्थिति हम कैसे बनाएं? एक हाथ की ताली से बांगूर कलकत्ता के भाई बहने बाबा के ही घर में अपनों का फिर से दिल से हम स्वागत करते हैं एक हाथ की ताली से सविता दीदी।
ओम शांति। बाबा के पास ज्ञान में जब आते हैं तब तो हमें ऐसा लगता है कि जो पाना था वो पा लिया है, जिसे ढूंढ रहे थे वो मंजिल हमको मिल गई है, और ऐसा भी महसूस करते हैं कि अब जिंदगी की राह आसान होगी। लेकिन ज्ञान में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मैं ऐसे कहूंगी कि जैसे ही सप्ताह कोर्स पूरा होता है और जब धारणा की बातें हम सुनते हैं तो वहां से ही शायद विघ्न शुरू हो जाते हैं। ब्राह्मण जीवन में सभी अनुभवी हैं, आप सब पुराने भाई बहने हैं, तो बाबा हमेशा कहते हैं कि ब्राह्मण बनना अर्थात विघ्नों का आह्वान करना। वैसे हम समझेंगे कि भगवान के बने तो विघ्न तो नहीं आने चाहिए, है ना, लेकिन कदम उठाते ही जैसे हम यज्ञ की शुरुआत में देखते हैं ना, ब्रह्मा बाबा के जीवन में भी जब ओम मंडली की स्थापना हुई उसके पूर्व ब्रह्मा बाबा का जीवन कैसा था। बाबा का समाज में बहुत सम्मान था, बहुत बाबा धनी थे, उस अनुसार जो भी बाबा के ब्राह्मण जीवन के अपनी मर्यादाएं थी उनका भी वो पालन करते थे, उस अनुसार उनकी प्रतिष्ठा थी। लेकिन जैसे ही शिव बाबा ने उनके तन में प्रवेश किया और जब सभी सत्संग में आने लगे और ये धारणा की बातें हुई, तो समाज जो सम्मान करता था वही गालियां देने लग गया। तो उन विघ्नों को कैसे पार किया, बहुत बाबा में निश्चय था, लगन थी, प्यार था, अनुभव था, तो वो विघ्न विघ्न नहीं लगे। आप सभी उस हिस्ट्री को जानते हैं। उस नशे में, उस लगन में कैसे वो परिस्थितियां आई और कैसे निकल गई, और ही उन्होंने उनको आगे बढ़ा दिया। जैसे कहते हैं विघ्न हमारे लगन को बढ़ा देते हैं, जब विघ्न आते हैं तब बाबा ज्यादा याद आता है, विघ्न नहीं होते तो शायद बाबा इतना, जैसे कहते हैं दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, तो भगवान के समीप ज्यादा कौन लाता है, विघ्न ही लाते हैं। तो शायद ये नोंद बनी हुई है इसीलिए कि बीच बीच में लगन की अग्नि को बढ़ाने के लिए ये विघ्न आ जाते हैं। तो वो तूफान जो भी उठे वो उन सब के लिए तोहफा बन गए। और कहते हैं कि जब तोहफा मिलता है ना तो हमें खुशी होती है, कितना भी बड़ा तोहफा हो या छोटा तोहफा हो, लेकिन तोहफा तो माना गिफ्ट, वो तो गिफ्ट ही होती है। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि हमेशा जो भी विघ्न आते हैं उन्हें क्या समझना है, ये हमें अनुभवी बनाने वाले हैं, ये विघ्न हमें आगे बढ़ाने वाले हैं, माना उसमें हमारा कल्याण क्या है वो हमें देखना है। अब बाबा ने तो कहा है कि संगम कल्याणकारी है, बाबा कल्याणकारी है, समय कल्याणकारी है, इसमें अकल्याण हो ही नहीं सकता। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं, जैसे कहा बाबा के बाद ज्ञान में आने के बाद हुई, हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। ज्ञान में चलने लगे तो बिजनेस पहले बहुत अच्छा चलता था, लेकिन ज्ञान में आने के बाद बिजनेस थोड़ा कम हो गया या कुछ लॉस हो गया उसमें, या परिवार में ही ऐसे कुछ, जैसे मुझे याद है एक भाई थे आईएएस थे वो, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट में सेक्रेटरी की पोस्ट पर वो काम करते थे। तो ज्ञान में चलने के पहले सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन ज्ञान में आने के बाद अचानक ही जैसे किसी ने उनके ऊपर आरोप लगा दिया, रिश्वत, क्योंकि आईएएस अफसर्स के ऊपर तो रिश्वत का आरोप बहुत आसानी से लग जाता है। तो कई बार ऐसे होता है कि आप अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी पहचान बन रही है, तो कुछ लोगों को ईर्ष्या भी होती है। तो कुछ ऐसा ही हुआ और उनको तुरंत सस्पेंड कर दिया, अब नौकरी से सस्पेंड हो गए। अब ज्ञान में चले तो बहुत समय नहीं हुआ था उनको, तो हमारा निश्चय भी उसमें हिल सकता है, होता है ना कभी ऐसे विघ्न आ जाए। तो अभी तक हमें ज्ञान में इतने गहरे अनुभव भी नहीं हुए हैं और उसके पहले ही ऐसा हो गया, तो थोड़ा सा संशय में हिलने लगे। और बोला हमारे रिश्तेदार, उन्होंने मेरे से बात की क्योंकि उन्होंने यहाँ ही कोर्स किया था, तो मेरे से बात की तो कहा कि हमारे रिश्तेदार कहते हैं देखो आपने भक्ति पूजा पाठ छोड़ दिया ना, इसीलिए आपके साथ ऐसा हुआ। बहुत लोग सोचते हैं हमारे देवता नाराज हो जाएंगे अगर हम उनकी पूजा नहीं करेंगे। तो फिर मेरे को पूछा क्या मैं फिर से वो शुरू कर दूं, क्योंकि अब उनको भी आधा आधा निश्चय था, तो मतलब फिर मैंने उनको समझाया कि देखो बाबा ने हमेशा कहा है कि हर स्थिति में कल्याण है, और हम सबके कोई ना कोई हिसाब किताब है, कोई भी अगर ऐसा परिणाम हमारे सामने आया है तो कहीं कोई कर्म होगा हमारा, बिना कारण के तो कोई परिणाम नहीं होता है। तो थोड़ा सा आप ज्ञान की गहराई में जाने का पुरुषार्थ करो जो आपको समय मिला है अभी, समझो जब तक वो आपको फिर से ड्यूटी पर नहीं लेते हैं तब तक आप क्लासेस सुनो, स्टडी करो। अभी तक आपको टाइम ही नहीं मिलता था क्योंकि इतना बिजी रहते थे, तो वो कई बार मुझे कहते भी थे कि मैं कोशिश करता हूं लेकिन मेरी इच्छा भी होती है पर मेरे पास टाइम नहीं है। तो वो कुछ टाइम उनको मिल गया और फिर उनको इतना अच्छा लगा जब उन्होंने क्लासेस सुनने शुरू किए, अपना लिटरेचर पढ़ना शुरू किया। पढ़ने की लगन तो थी ही, आईएएस जो बनते हैं वो पढ़ने की लगन वाले ही होते हैं। तब उनको सारा राज समझ में आ गया, फिर अब नहीं दुख होता था उनको, एकदम जैसे सस्पेंड कर दिया तो बहुत दुख होता था। तो कई बार बाबा हमको ये कहते हैं कि विघ्न आया वो ठीक है, लेकिन उस विघ्न को हमने पास कैसे किया। एक होता है पास विद ऑनर होना, वो हमारी परीक्षा है ना, क्योंकि हम गॉडलेस स्टूडेंट हैं, गॉडलेस स्टूडेंट हैं तो परीक्षा तो देनी है, तभी क्लास आगे बढ़ेगी। आपके ज्ञान की गहराई कितनी है उसकी परीक्षा होती है, आपके गुणों की धारणा कितनी है उसकी परीक्षा होती है, आपने शक्तियों को कितना यूज किया है उसकी भी परीक्षा होती है। तो कहीं हमारी सहन शक्ति की परीक्षा हो जाती है किसी विघ्न में, कहीं हमारी सामना करने की शक्ति की परीक्षा हो जाती है, कहीं हमारे परखने की शक्ति की परीक्षा हो जाती है। तो जो ज्ञान बाबा ने हमें दिया है, जो खजाने हमें दिए हैं, उनकी हमें परीक्षा तो देनी होती है, पर वो परीक्षा में मैंने पास कैसे किया। पास विद ऑनर किसको कहेंगे, किसको कहेंगे? हाँ, कि कितना भी बड़ा विघ्न है लेकिन उसमें मेरी स्थिति अचल, अटल, अडोल, एकरस रही, और बाबा में जो निश्चय है वो एक संकल्प मात्र भी हिला तो नहीं, क्योंकि परीक्षाओं के समय ही हमारा निश्चय हिल सकता है। बाबा है, बाबा ने मेरी मदद नहीं की, या बाबा मेरा साथी है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों, ड्रामा में क्या मेरे साथ ही ऐसा होना था, मतलब इस तरह के यदि हम क्वेश्चंस उठाते हैं क्यों क्या कैसे में अगर हम चले जाते हैं तो हम फेल हुए या पास हुए। और फिर भी यदि उसमें हम बिल्कुल खुश रहें, ऐसे तो जरूरी नहीं है कि बहुत खुश रहें, ऐसे कल की मुरली में बाबा ने कहा, खुशी पर वरदान था ना कल, तो खुशी कैसी होनी चाहिए, सदा काल की खुशी, उसमें भी कम ज्यादा नहीं, मतलब कभी खुशी कम है कभी ज्यादा ऐसे भी नहीं, सदा एक रस, खुशी भी एक रस होनी चाहिए, पर चलो खुशी ना भी रहे लेकिन कम से कम एकदम साक्षी स्थिति से हमने उस विघ्न को पार कर लिया। तो फिर बाबा के पास हमारे मार्क्स पास विद ऑनर के जमा हो जाते हैं। तो विघ्नों के लिए कई बार बाबा कहते हैं पास पास पास, तीन बार पास करना है। तो एक तो मुझे पास होना है जो मेरा लक्ष्य है पास विद ऑनर का, दूसरा जो बाबा के पास रहना है, यानी बाबा साथ है तो हम पास विद ऑनर हो ही जाएंगे, क्योंकि सर्वशक्तिवान मेरा साथी है। जब सर्व समर्थ मेरा साथी है तो फिर हमारी सामना करने की शक्ति बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी, है ना? जैसे दुनिया में भी होता है ना, जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं या कोई भी ऐसी पोस्ट पर लोग होते हैं तो उनको कमांडोज मिलते हैं, क्योंकि अगर उनको ये भय होता है कि कोई उनको मार देगा या कोई भी उनके ऊपर अटैक कर सकता है, कोई भी ऐसा विघ्न उनके ऊपर आ सकता है, तो पहले से उनकी सुरक्षा के लिए दिया जाता है। और उनके साथ जब वो चलते हैं तो बिल्कुल निर्भय चलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे बचाने वाले हमारे साथ हैं। तो शिव बाबा हमारा रक्षक है, परम रक्षक है। जब वो मेरे साथ है, सर्वशक्तिमान मेरे साथ है, तो फिर कोई विघ्न मेरा क्या बिगाड़ सकता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि हम अभिमान में आ जाएं। एक होता है शुद्ध नशा और एक होता है उल्टा नशा, है ना। तो फिर बाबा मेरे साथ हैं, सर्वसमर्थ मेरे साथ है, उसकी शक्तियां मेरे साथ हैं, तो इसको मैं पास कर ही लेने वाली हूं। और तीसरा पास माना, पास्ट इज पास्ट, जो बीत गया सो बीत गया, जो बात हो गई फिर उसका चिंतन नहीं करना है। अब बाबा कहता है वो कल्प के बाद वापस आने वाली है। कोई भी बात 5000 साल के बाद फिर से रिपीट होगी, लेकिन हम क्या करते हैं, कई बार उसको बार बार चिंतन में ले आते हैं। तो किसी भी बात में हम व्यर्थ संकल्प चलाते हैं, कोई भी विघ्न में, तो वो राई पहाड़ बन जाता है। और यदि हम फुल स्टॉप लगा देते हैं तो पहाड़ को भी हम राई, राई तो क्या बना, हम बाबा कहते हैं रुई भी बना सकते हैं। ये हमारे ऊपर है। किसी भी विघ्न तो कई प्रकार के हो सकते हैं, हमारे स्वयं के संस्कारों के विघ्न हो सकते हैं, दूसरों से हमारे ऊपर जो विघ्न आते हैं, मानो कोई हमारा विरोध कर रहा है। आप ज्ञान में आते हैं, आपका पूरा परिवार तो ज्ञान में नहीं आता है, तो ये विघ्न तो ब्राह्मणों को पास करना ही पड़ता है। और फिर जो भी आप करते हैं वो भी उनको पसंद नहीं, आप सुबह सुबह अमृत वेले उठते हैं वो भी उनको पसंद नहीं, आप मुरली क्लास में आते हैं वो भी उनको पसंद नहीं। बहुत लोगों ने पास किया होगा, होता है ना ऐसा, तो फिर क्या करेंगे, हम स्टॉप कर देंगे क्या? और अगर हम स्टॉप नहीं करते और संकल्प भी चलाते रहते हैं कि इनको पता है मुझे जाना है, फिर भी ये मुझे बोलते हैं, फिर भी रोज मेरे से इस बात को लेकर के नाराज होते हैं या मूड ऑफ करते हैं या टेंशन करते हैं या लड़ाई करते हैं, जो भी करते हैं मानो, तो फिर हमें क्या करना है? अब रहना तो उनके साथ ही है, श्रीमत है, छोड़ना भी नहीं है, और पुरुषार्थ भी करना है, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे, आपसे पूछते हैं हम, क्योंकि सब पुराने अनुभवी भाई बहने बैठे हैं ना, सब पास कर चुके हैं इसको। मनसा सेवा करेंगे जरूर, क्या हम उनके जैसा ही व्यवहार करने लग जाएंगे? हाँ, वो हम पर नाराज हो रहे हैं तो चलो एक बार, दो बार, चार बार, कितनी बार सहन करेंगे? आखिर तो कोई लिमिट होती है ना, इतनी बार सुन लिया, अभी एक बार तो अच्छी तरह से बता दो इनको। ऐसा करेंगे? नहीं। कितनी भी बार उन्होंने हमारे प्रति नाराजगी दिखाई होगी, लेकिन फिर भी, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं, अगर मुझे पास होना है तो मैं कैसा व्यवहार करूंगी? कैसा व्यवहार करूंगी? शुभ भावना वाला और उनके प्रति सुख देने वाला व्यवहार, ताकि उनको जरा भी महसूस ना हो, और ही उनको ये लगे कि ये ज्ञान में जाने के बाद हमारे घर का वातावरण और ही अच्छा हो गया है, इनमें बहुत परिवर्तन आ गया। और ऐसे बहुत भाई बहने हैं जिन्होंने अपने, चाहे अगर वो पति नहीं चलते ज्ञान में, तो उन्होंने अपने परिवर्तन से, आप उनको ज्ञान देंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो आपको बहुत समय से जानते हैं, वो ऐसे कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, उनको आपका ज्ञान नहीं समझ में आने वाला, लेकिन आपका व्यवहार जरूर उनको समझ में आता है। तो ऐसे लोगों को परिवर्तन करके वो ज्ञान में ले आए, अपने परिवर्तन से, जो देखा उन्होंने कि ये पहले ऐसे नहीं थे और अब इनमें कितना बड़ा परिवर्तन है। कई पति अपनी पत्नी को भी ले आए ज्ञान में। तो ये शक्ति, जैसे हम इसे कहेंगे सहन करने की शक्ति और समाने की शक्ति, हमने यूज की है। विघ्न आए हमारे परिवार में, खान पान की बात होती है, आजकल तो बाहर जाकर खाना बहुत ही कॉमन है, हर संडे लोग बाहर रेस्टोरेंट में जाकर ना खाएं तो उनको लगता ही नहीं है कि जिंदगी जी रहे हैं। जिंदगी जीने का मतलब क्या है? बाहर खाना। अब बाबा ने तो बिल्कुल मना कर रखा है बाहर खाना, और आपने स्टॉप कर दिया एकदम बाहर खाना, तो आपके परिवार वालों को तो बिल्कुल नहीं पसंद आएगा। तो क्या करेंगे, उनको भी खुश करना है और बाबा को भी खुश करना है, क्या करेंगे बोलो। हाँ जी, थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, हाँ दृष्टि देके खा लेंगे, हाँ जोर से नहीं बोल रहे हैं, होटल का खाना घर में बना के खिलाएंगे, वैसे ही डिशेस उनको घर में बना के खिलाएंगे, लेकिन उनको तो घूमने का भी तो मजा होता है ना, तो वो घूमने का भी मजा लेना है, उनको घर में तो वो मजा नहीं आएगा, घर से खाना लेके वहां जाके खा लेंगे अपना डब्बा खोल के। नहीं बहुत अच्छा, अच्छे अनुभव से जवाब दे रहे हैं आप। तो बाबा हमें ऐसा कहते हैं कि भले ही परिवार वाले हैं, चलो उनके लिए तो अगर वो ज्ञान में नहीं चलते हैं तो उनके लिए तो उस भोजन का मतलब वो पिकनिक का या पार्टी का जो भी है वो इम्पोर्टेंस है, लेकिन उनको खुश करने के लिए यदि हम अपनी धारणा में कमी लाते हैं, तो बाबा ने कहा एक जन्म के लिए भगवान को हमें निभाना है तो वो हमें जन्म जन्मांतर की प्राप्ति कराने वाला है, और संबंधों को तो हमने अनेक जन्मों से निभाया है और वो सदा खुश रहने वाले नहीं है। आज आप उनको खुश करेंगे वो कल भी खुश रहेंगे आपसे, या नाराज हो जाएंगे आपको पता नहीं है ना, तो कभी भी उसके कारण अपनी धारणा को कम नहीं करना। ये जन्म भगवान को निभाने का है, लौकिक संबंधों की मर्यादा को लोक लाज को निभाने का जन्म संगम युग का जन्म नहीं है। तो फिर उसमें हमको ऐसा रास्ता निकालना है कि वो भी संतुष्ट हों और हम भी संतुष्ट हों और हमारी धारणा भी बनी रहे। फिर आप जो भी करो, चाहे टिफिन ले जाओ या जो भी तरीका आपको समझ में आता है उनको घर में बनाकर खिलाओ, लेकिन हमारी धारणा बिल्कुल नहीं टूटनी चाहिए। और कई बार पवित्रता की जो विघ्न आते हैं, मेरे को याद है कई कई माताएं, बाबा तो मुरली में बहुत इसके बारे में हमें समझाते हैं, लेकिन एक माता जिसका केस मैं कहूंगी इतना बुरा कि जिसको कहीं भी कल्याण नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी कैसे उसमें भी कल्याण था वो बाद में समझ में आया। कहते हैं ना कि कल्याण भविष्य के पर्दे में होता है, उसी समय सामने हमें नहीं समझ में आता। तो ऐसे ही एक माता मेरे पास आई, वो माताओं की भट्टी में आई हुई थी और मेरे से मिली वो और बात करने लगी और मेरे को बोली कि मैं बहुत दुखी हूं। और फिर उसने अपना पूरा केस सुनाया, उसने कहा कि मैं ज्ञान में चलने लगी तो मेरे पति ज्ञान में नहीं चलते हैं, तो मेरे 3 बच्चे हैं और बहुत ज्यादा मेरे से मारपीट होने लगी घर में, तो फिर मैंने सोचा कि मैं घर छोड़ देती हूँ और मैं सिलाई जानती हूँ, तो मैंने सोचा सिलाई करके मैं अपना खर्चा चलाऊंगी। और फिर उन्होंने मेरे को कहा कि बच्चे भी अपने साथ में ले जाओ, यहाँ बच्चे भी नहीं रहेंगे, बच्चे भी आपके साथ रहेंगे। तो मैं अलग हो गई और अलग रहने लग गई। अब जो 3 बच्चे थे उसमें जो बड़ा बेटा था, उसके 2 बेटे थे और 1 बेटी थी, जो बड़ा बेटा था वो थोड़ा समझदार था, 17-18 साल का बेटा था, उसने सोचा कि माँ को मुझे मदद करनी चाहिए, तो उसने कहीं वो ये जो बिल्डिंग वगैरह बनती है कंस्ट्रक्शन वर्क में कहीं काम ले लिया उसने, और थोड़ा अच्छा काम हुआ उसका, 5-6 महीने में उसने मोटरसाइकिल ले लिए, और वो मोटरसाइकिल लेकर के एक दिन जा रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया। इतना एक्सपीरियंस नहीं था उसको मोटरसाइकिल चलाने का, और शहर में चला रहा था तो एक्सीडेंट हो गया। उसको खबर मिली कि वो हॉस्पिटल में है, एक्सीडेंट हो गया है, पहुंची वहां तो डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं कह सकते, अभी 2-3 दिन तक देखना पड़ेगा। उसको हेड इंजरी हुई थी, सिर में चोट लगी थी, और वो बेटा उसका बच्चा नहीं, उसने शरीर छोड़ दिया। तो बहुत दुखी हो गई, एक तो घर छूट गया उसके बाद। तो फिर थोड़े दिन गुजरे, कुछ महीने, चलो बाबा के ज्ञान से अपने थोड़ा बाबा की जो भी शक्ति थी उससे उसने अपने मन को ठीक किया। और एक दिन उसकी बेटी जो है वो घर में सफाई कर रही थी, तो वो स्टूल पे चढ़ के पंखा साफ कर रही थी, तो पता नहीं कैसे उसका पैर हिला और वो गिर गई। गिरी, सिर के बल गिरी और उसकी भी हेड इंजरी हो गई और उसकी भी डेथ हो गई। अब दो बच्चे चले गए। अब लोगों ने उसको बोलना शुरू कर दिया कि तू ब्रह्मा कुमारी में आई तो तेरे को क्या मिला। मतलब चांस मिल जाता है ना, जैसे औरों को भी तो चांस मिलता है बोलने का। ये देखो क्या हो गया, तुम्हारा सारा घर बर्बाद हो गया। अब एक बेटा रह गया था, वो बेटा भी बहुत डर गया और डर के कारण वो उसको छोड़कर चला गया माँ को, क्योंकि दो भाई बहनों की डेथ हो गई तो उसने क्या सोचा, अब मेरा नंबर ना लग जाएगा। तो वो चला गया और अब वो बिल्कुल अकेली हो गई। तो उन्हीं दिनों में वो मधुबन में आई थी और मेरे को ये सारी बात उसने सुनाई। उसने कहा कि सचमुच मैं बहुत बाबा को याद करती हूँ, लेकिन मेरा मन जो है वो शांत नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ, क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आता, मैं वापस भी नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं वहां भी गई तो मेरे साथ कैसा व्यवहार होगा मैं जानती हूँ। तो फिर मैंने उसको कहा कोई बात नहीं, अभी आप आई हो, आप दो महीना यहाँ ही सेवा ले लो मधुबन में, बाबा के घर में आप रहोगे, यहाँ पर क्लासेस वगैरह आप करोगे तो धीरे धीरे आपका मन बदल जाएगा, जो एक डिप्रेशन जैसा फेज आ गया है उससे आप निकल पाओगे। रही वो दो मास यहाँ पर, तो दो मास में काफी मतलब उसका उसमें परिवर्तन आ गया और उसने समझ लिया कि ठीक है, ड्रामा में जो पार्ट था, जो मेरे हिसाब किताब थे, जैसे हमको बाबा ने ये भी समझाया है कि अगर कोई ऐसी बात हो रही है, उन आत्माओं के साथ हमारा कोई ऐसा हिसाब किताब था जो पूरा हो गया, मानो किसी से हमने कोई कर्ज लिया हुआ है और वो कर्ज मैंने चुका दिया, तो हम कैसा महसूस करते हैं, हल्का महसूस करते हैं ना कि कर्ज चुक्त हो गया। तो पता है 63 जन्मों के हिसाब किताब है, अनेक आत्माओं से अंतिम जन्म है, सारा हिसाब किताब खत्म करना है, कोई हिसाब किताब साथ में तो लेकर के नहीं जाना है। तो जैसे कि मन थोड़ा शांति में धीरज में आ गया, फिर उसने कहा कि मैं थोड़ा और समय, रिक्वेस्ट की कि मैं थोड़ा और समय रहूं मधुबन में, अब और तो कोई है नहीं जिसके लिए मुझे जाना है, तो फिर 6 महीना तक वो यहां रह गई। फिर मेरे को वो पूछने लगी कि मैं तो अभी निर्बंधन हूं और अगर मैं मधुबन में ही सेवा कर पाऊं, मधुबन में रहते रहते इतना मन लग गया और इतना खुशी भी आने लग गई उसको कि देखो बाबा के घर में मुझे, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतना बाबा के घर में रह पाऊंगी। फिर मैंने उसको बोला आपको बड़ों से बात करनी पड़ेगी, अगर वो समझेंगे कि आपकी स्थिति ऐसी है और आपको रहना चाहिए तो फिर हो जाएगा। फिर उसने निर्भय भाई से जाकर के बात की, तो निर्भय भाई ने सारा उनको समझा और फिर उनकी टेलरिंग में सेवा लगा दी, क्योंकि वो सिलाई जानती थी और वो बहन मधुबन निवासी बन गई। अब बताइए कल्याण क्या था, कहां से कहां एकदम ड्रामा घूम गया अचानक। तो कई बार ऐसा होता है कि देखने में हमारे साथ इतना बुरा सबके साथ नहीं होता है, ये तो एक्सट्रीम है, छोटी छोटी बातें ही होती हैं हमारे जीवन में। तो ज्यादा जो विघ्न आते हैं वो इसी तरह के आते हैं, थोड़ा पारिवारिक आ गए, थोड़ा जो हम काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं उसमें कोई, या हमारे अपने संस्कारों के विघ्न, अपने ही जो विकार हैं, माया से भी तो युद्ध है ना हमारी, तो वो भी समय प्रति समय अपना टेस्ट करने के लिए आते रहते हैं, एकदम तो पीछा नहीं छोड़ते हैं। लेकिन जो माया से हमारी युद्ध है उसके लिए हमें अपने ज्ञान को यूज करना है, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र बाबा ने हमें दिए हैं, हम सभी युद्ध के मैदान में हैं। बाबा कहते हैं हम सब वॉरियर्स हैं, अननोन बट वेरी वेल नोन। तो अननोन इसलिए हैं क्योंकि ये अंदर की युद्ध है, बाहर की युद्ध नहीं है, कोई युद्ध के मैदान में हम खड़े नहीं हैं। लेकिन जैसे वो सैनिक जो युद्ध के मैदान में जाते हैं वो अपने अस्त्र शस्त्र का अभ्यास नहीं छोड़ते हैं, हर दिन उनको गोली चलाने की प्रैक्टिस करनी है, ना हर दिन जो उनके हथियार हैं वो चलाने की प्रैक्टिस करनी है, तब जब समय आएगा दुश्मन सामने आएगा तब उनका निशाना सही लगेगा, ऐसे ही है ना। अगर उन्होंने रोज प्रैक्टिस नहीं की तो सही समय पर निशाना चूक सकता है, अगर उनको एरोप्लेन से भी बम गिराना है तो भी उनका ट्रेनिंग होता रहता है। तो यहां हमारे शस्त्र कौन से हैं, तो इसीलिए बाबा हमें कहता है कि रोज विचार सागर मंथन करना है, यानी जो ज्ञान हमें मिल रहा है उसका अभ्यास करना है। कोई भी परिस्थिति आती है उसके लिए बाबा ने हमें ज्ञान की कौन सी बात कही है, वो हमें समय पर कब याद आएगी, जब हमने उसे अपने में समाया है। अगर समाया ही नहीं है तो सुना और भूल गए। मुरली तो रोज सुनते हैं लेकिन मानो आज काम विकार की बात है तो बाबा हमें रोज मुरली में आत्मा अभिमानी बनने की बात कहते हैं। अब कोई ऐसा पेपर, माना हम तमो प्रधान दुनिया में रहते हैं, कोई भी ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है तो तुरंत मुझे ये स्मृति आ जाए और हम तुरंत देह से न्यारे हो जाएं, ना दूसरे की देह को देख रहे हैं ना अपनी देह को देख रहे हैं। बाबा ने क्या समझाया हमें, हमारी नजर किस पर जानी चाहिए, मस्तक मणि पर। हाँ, मस्तक पर ही नजर जानी चाहिए और कहीं नजर जानी ही नहीं चाहिए। तो अगर मुझे तुरंत वो स्मृति आ गई तब मैं समर्थ हो जाऊंगी और माया के उस पेपर में मैं पास हो जाऊंगी, और अगर नहीं आई तो भले ही मुझे कितना भी मालूम है मैं आत्मा हूं, पहला ही पार्ट है वो तो, लेकिन कुछ नहीं होने वाला, मैं फेल हो जाऊंगी और उसके बाद मुझे याद आएगा, अरे हाँ मेरे को तो ये याद ही नहीं आया। गुस्से में भी ऐसे ही होता है, गुस्सा कर लेते हैं, अब बिना परिस्थिति के तो गुस्सा आएगा ही नहीं। ब्राह्मण है तो चलो और अटेंशन रखते हैं हम, है ना, लेकिन फिर भी कई स्थिति ऐसी होती है कि हम पहले गुस्सा कर जाते हैं और फिर बाद में याद आता है कि मुझे तो गुस्सा करना ही नहीं चाहिए था। तो इसका मतलब मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति ही मेरा स्वधर्म है, शांति की मैं देवी हूं, या मुझे ही शांति का दान देना है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मुझे अभी तक समाया नहीं, वो मेरा संस्कार नहीं बना है अभी, तो इसलिए मुझे गुस्सा आ जाता है। किसी ने मेरा अपमान कर दिया, किसी ने मेरे के साथ ऐसा व्यवहार कर दिया, गुस्सा ज्यादा किस बात में आता है, दूसरों का व्यवहार हमें पसंद नहीं आता है, ये ऐसा कहते हैं, ये ऐसा करते हैं, तो क्या करना है। अभी भी ऐसा होता है, आप सभी बाबा के बच्चे बैठे हैं, अगर आपसे ये पूछें कि कितने हैं जिन्हों को किसी भी परिस्थिति में गुस्सा नहीं आता है, मन से भी नहीं आता है, मतलब कई बार ऐसा होता है मुख से हम चुप रहते हैं, ब्राह्मण है ना तो थोड़ा सा इतना कंट्रोल तो हो गया है कि मुंह पर कंट्रोल कर लेंगे कि अभी नहीं बोलना है, लेकिन मन में तो कौन देख रहा है मन में तो गुस्सा चला सकते हैं ना, तो फिर घंटों कई बार चलता रहता है, फीलिंग जिसको बोलते हैं ना, बहुत फीलिंग में आ जाते हैं, फिर इतने व्यर्थ संकल्प कि योग ही नहीं लगता है बाबा से, है ना, स्थिति ही डाउन हो जाती है बिल्कुल। तो इतना मतलब गुस्सा की बिल्कुल मन तक भी ना टच करे, ये है तो ऊंची स्टेज, लेकिन फिर भी अगर किसी ने इस स्थिति को प्राप्त किया है आप में से तो हाथ उठाइए, कोई नहीं उठा रहा है तो अपने ही संस्कार है ना, अभी वही हमारे विघ्न, वो हमने नहीं जीते हैं, तो क्यों नहीं जीत पा रहे हम। बहुत सालों से होंगे, कई भाई बहने 20-25 साल से भी होंगे, है ना, लेकिन कई बार देखते हैं जितना आगे बढ़ते जाते हैं ना उतना ही गुस्सा भी बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता है गुस्सा, क्योंकि अगर देह अभिमान थोड़ा बढ़ता जाएगा तो उसके साथ साथ पोजीशन बढ़ती जाती है, तो थोड़ा थोड़ा हम सोचते नहीं हम तो देह अभिमानी है पर वास्तव में नहीं होते हैं, वही बहुत सूक्ष्म चीज है ये, और उतना सूक्ष्मता से पुरुषार्थ करना कई बार हम उस पर इतना अटेंशन नहीं देते हैं। अब ऐसे ही मानो अहंकार की बात हम करते हैं तो बाबा के ज्ञान में आने के बाद जो दुनिया वाले अहंकार हैं वो खत्म हो जाते हैं हमारे। दुनिया वाले होते हैं भाई, मैं डॉक्टर हूं, मैं जो भी हूं, जो भी मेरी पोजीशन है, वो सब नहीं सोचते हम कि ठीक है ये तो मेरा रोल है, ये समाज में मुझे अपना कार्य करने के लिए मिला हुआ है। लेकिन जब हम ज्ञानी हो जाते हैं तो फिर मैं ही राइट हूं, मैं जो कह रही हूं, मैं जो कर रही हूं वो सही है, दूसरे की बात तो मुझे कभी सही लगती ही नहीं है, ये स्थिति आने लग जाती है। क्योंकि ज्ञानी समझते हैं ना अपने आप को, तो कभी भी दूसरे के विचारों को सम्मान नहीं देते अगर हम, तो फिर हम उसको अहंकार का सूक्ष्म रूप ही कहेंगे। लेकिन हर आत्मा के जो विचार हैं वो उसके अनुसार, हम हमारी स्थिति में हम सही हैं तो उसकी स्थिति में वो सही है, हो सकता है मेरी नजर में वो गलत हो लेकिन उनकी नजर में, इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं दूसरों के विचारों को भी सम्मान दो। और अगर नहीं, अगर समझो आप किसी को कोई राय दे रहे हैं और वो नहीं मानते तो साक्षी हो जाओ, लेकिन उनके प्रति जो मेरी दृष्टि है वो इस प्रकार की होनी चाहिए। फिर कई बार ऐसे होता है कि हम दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, सब कुछ मेरे अनुसार ही चले, तो ये भी सूक्ष्म अहंकार का अंश है। तीसरी बात होती है कि हम समझते हैं कि अगर किसी की तारीफ हो रही है, मानो कोई हमारे सामने किसी की तारीफ कर रहा है, तो फिर हमें पसंद नहीं आता वो, और हमें उनकी कुछ कमियां भी पता होती हैं, तो फिर हम वो कमी पहले बताएंगे, हम कहेंगे नहीं आपको पता नहीं है वो कैसे हैं। तो क्यों हम उनकी तारीफ स्वीकार नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं हम अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं, तो ये भी सूक्ष्म अहंकार का अंश होता है। और मानो ईर्ष्या हो जाती है कि कोई हमसे आगे जा रहा है और वो हमें पसंद नहीं आता है। ऐसे तो हम सभी रेस में हैं, पर बाबा क्या कहता है, रेस करना है लेकिन रेस नहीं करना है। हमारी रेस किस प्रकार की है, पहले आप, बाबा ने क्या सिखाया है, जहां भी हम संगठन में हैं, चाहे हम सेवा में हैं, संगठन तो सेवा में ही होता है ज्यादातर, दैवी परिवार में हम आते हैं, चाहे अपने लौकिक परिवार, लौकिक संबंधों में हम आते हैं, लेकिन हमारी वृत्ति क्या होनी चाहिए, अगर हम इन विघ्नों को जीतना चाहते हैं तो हमेशा दूसरों को आगे रखना। बाबा कहता है पुरुषार्थ में पहले मैं, और प्राप्ति में, नाम मान शान में कौन आगे, पहले आप। कर सकते हैं या मुश्किल लगता है, जैसे ब्रह्मा बाबा करते थे, सदा बाबा ने मम्मा को आगे रखा, बच्चों को आगे रखा, लेकिन पुरुषार्थ में 2:30 बजे से लेकर के सुबह रात तक की दिनचर्या में ब्रह्मा बाबा नंबर 1 थे। लास्ट में भी बाबा ने अपना पार्ट पूरा किया, लास्ट में भी बाबा ने मुरली सुनाई, उसके बाद बाबा अव्यक्त हुए, है ना। तो पुरुषार्थ में कम नहीं, लेकिन तो जब भी माया से हमारी युद्ध की बात आती है, कोई भी विकार का सूक्ष्म अंश जागृत हो जाता है, तो ज्ञान के शस्त्र सही समय पर कार्य करें। फिर चाहे वो ड्रामा का है, ड्रामा का फुल स्टॉप लगा दो, बाबा कहता है। अब ड्रामा का फुल स्टॉप मुझे पता है, लेकिन फिर हम ड्रामा ड्रामा भी करते रहते हैं और क्वेश्चन मार्क में भी आते रहते हैं। ड्रामा के फुल स्टॉप की बजाय क्या लग जाता है, क्वेश्चन मार्क। अब क्यों नहीं ड्रामा का फुल स्टॉप लग रहा है, क्योंकि ड्रामा का अभ्यास ही नहीं है, सिर्फ सुना हुआ है उसको। तो जब तक हमने उससे बार 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 अभ्यास नहीं किया है, तब तक हम विघ्न जीत नहीं बन सकते। और भी जब कभी भी विघ्न आते हैं तो फिर बाबा हमें कई बार कहते हैं संगठन में, जैसे मानो सेंटर पर कोई ऐसा विघ्न है, यज्ञ में कोई ऐसा विघ्न है, तो हम योग करें। विघ्न के समय बाबा याद आता ही है, लेकिन विशेष योग का प्रोग्राम, जैसे कई बार कहते हैं कि अखंड योग करना है, या फिर 21 दिन तक लगातार हम इस बात को लेकर के योग करें। तन की बीमारियां भी कई बार आ जाती हैं विघ्न के रूप में, मतलब हमें ऐसा लगता है कि हमारे पुरुषार्थी जीवन में विघ्न कौन बन रहा है, हमारा शरीर बन रहा है, कि हम तन से उतना स्वस्थ नहीं है कि जैसा हम पुरुषार्थ करना चाहे करें। तो अगर कोई ऐसी बीमारी है जो मुझे रुकावट पैदा कर रही है, और उस बीमारी को दूर करने के लिए इलाज तो है ही, इलाज तो लेना ही है, वो तो आज बहुत साधन है, बहुत पैथियां हैं ना, बाबा मना नहीं करता है, बाबा डॉक्टर का रोल प्ले नहीं करता है ना कि आप डॉक्टर के ऊपर छोड़ दो, लो जी डॉक्टर इलाज बाबा के ऊपर छोड़ दो कि बाबा डॉक्टर का भी काम करेगा, नहीं। लेकिन साथ साथ अगर हम योग का प्रयोग भी करते हैं तो वो हमारी बीमारी को सूली से कांटा कर देगा। और कई बार बाबा कहता है कांटे को भी आप कांटा मत रहने दो, उसको भी योग अग्नि से भस्म कर दो। तो ऐसे भी बहुत अनुभव हैं हमारे भाई बहनों के पास, कि जब उनके उनके ऊपर इस प्रकार की कोई, हमारी दादियां ही देख लो, दादी जानकी को आप देखते हैं, आज दादी जानकी 100 साल की है, अभी मुरली में, संडे की मुरली में था ना दादी के बारे में, निरोगी काया मिल गई है, काया कल्प तरु हो गई। तो उस समय रतन मोहिनी दादी जी सुना रही थी कि दादी इतनी बीमार थी कि लगता था आप कब शरीर छोड़ेंगे, मतलब आज कल, मतलब ऐसी स्थिति थी उस समय। लेकिन दादी जानकी की जो दृढ़ता है, जो हिम्मत है, जिसके लिए हिम्मते बच्चे मददे बाप, हिम्मत रखते हैं तो बाबा हजार गुना हमको मदद देता है। और बीमारी का वर्णन नहीं बिल्कुल भी, दादियों को हमेशा हमने देखा, चाहे बड़ी दादी के पास मैं रही हूँ, दादी की मैंने स्थिति को देखा, कभी वर्णन नहीं करेंगे कि उनको क्या तकलीफ हो रही है। हाँ, डॉक्टर ने पूछा तो भी उतना ही जितना जरूरी है। तो ये भी बीमारी को सूली से कांटा बनाने का साधन है कि हम बीमारी कॉन्शियस नहीं है लेकिन सोल कॉन्शियस है। जितना हम सोल कॉन्शियस रहते हैं उतना बाबा की दुआएं और शक्तियां आत्मा में जमा होती हैं, और जल्दी हम उस बीमारी से बाहर आ जाते हैं। तो ऐसी बीमारी को भी दादी ने जीता, और देखो आज 100 साल की आयु, यज्ञ में नंबर 1 ब्रह्मा बाबा से भी आगे, ब्रह्मा बाबा भी 93 ईयर्स तक थे, लेकिन दादी जानकी ने अपने 100 वर्ष भी पूरे किए हैं। तो तन के विघ्न को भी हम समाप्त कर सकते। मेरे खुद के जीवन का भी अनुभव है। मैं समझती हूँ 6-7 साल पहले हम चेकअप तो कराते ही हैं, हेल्थ चेकअप कराते हैं, तो ऐसे ही मैंने चेकअप कराया तो सोनोग्राफी में आया एक गांठ है, जो पानी वाली गांठ थी, उसको सिस्ट बोलते हैं। तो ऑपरेशन करना है, सीधा सा इलाज होता है गांठ माना, उसका ऑपरेशन करना है। फिर डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपकी मर्जी है, ये कोई खतरे वाली गांठ नहीं है, आपकी मर्जी है, आप थोड़ा समय के बाद भी करा सकते हो, लेकिन फिर करा लेना। तो फिर मैंने सोचा अगर डॉक्टर टाइम दे रहा है तो क्यों ना थोड़ा सा हम योग का प्रयोग भी कर लेते हैं, क्योंकि उसकी तो कोई दवाई नहीं होती है। एलोपैथिक में तो इन चीजों की कोई दवाई नहीं होती है, पर दूसरी पैथी वाले फिर भी देते हैं कुछ कुछ ना, होम्योपैथिक वाले, और वो तो मैंने होम्योपैथिक से ले लिया दवाई, और रोज मैंने 15 मिनट सेट कर लिया अपना कि अमृत वेले के बाद या जब भी मैं अच्छा योग करूंगी शाम के समय ना, 15 मिनट मुझे अपने इसको वाइब्रेशन देना है, और मुझे क्या थॉट देना है वो मैंने फिक्स कर लिया। फिर उसने मुझे बोला डॉक्टर ने, 3 महीने के बाद आप एक बार फिर से सोनोग्राफी करा लेना, हम देखेंगे ये बढ़ रहा है या घट रहा है, उस अनुसार फिर आपका सेट करेंगे। 3 महीने के बाद मैं फिर से सोनोग्राफी कराने गई तो अब वो जो था, जो पहले उसमें 7 सेंटीमीटर आया था, वो अब 5 सेंटीमीटर आया था, 2 सेंटीमीटर वो कम हो गया। तो डॉक्टर को आश्चर्य हुआ, उसने कहा क्या किया आपने, दो ये तो कम हो गया है, तो इसलिए अभी हम ऑपरेशन का नहीं सोचेंगे। तो फिर मैंने उसको ये तो नहीं बताया डॉक्टर को कि मैं योग का प्रयोग कर रही हूँ, पर मैंने ऐसे बोला मैंने होम्योपैथिक दवाई खाई, वो भी मैं खा रही थी। उसने कहा ठीक है, तो हम 3 महीने के बाद फिर से चेक करेंगे, ऐसे उसने मुझे कहा। फिर मैं 3 महीने के बाद फिर गई कराने, तो वो 2 सेंटीमीटर और कम हो गया था। तो वो डॉक्टर के हिसाब से अब ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत छोटा साइज हो गया है। उसने कहा कि ठीक है अभी 6 महीने के बाद सोनोग्राफी होगी आपकी। तो मैंने कहा अच्छी बात है, मैंने कहा 6 महीना तो बहुत लंबा टाइम है, इस समय में तो मैं पूरा इसको खत्म कर लूंगी। और ऐसे ही हुआ, जब नेक्स्ट 6 महीने के बाद सोनोग्राफी कराई तो वो था ही नहीं वहां पर, तो पूरी तरह से मतलब अब से जो भी कहेंगे, मैं ये नहीं कहती कि सब कर पाएंगे इस चीज को, क्योंकि उसमें जितनी एकाग्रता हमें चाहिए उतना एकाग्रता से हमारा योग होना चाहिए, यानी जो हमारी माइंड की एनर्जी है वो पूरी उस बीमारी पर फोकस हो। जैसे अभी हम कैट प्रोग्राम करते हैं, है ना, कोरोनरी आर्टरी डिजीज वाला जो प्रोग्राम डॉक्टर सतीश गुप्ता कराते हैं, तो उसमें भी वो यही प्रयोग करते हैं कि जो आर्टरी है उसकी जो ब्लॉकेजेस हैं उसे हमें राजयोग के द्वारा खोलना है। थोड़ा लाइफस्टाइल भी, ऐसे नहीं कि हमें दवाइयों का आधार, बाबा ने फिर ये मना नहीं किया है, दवाई लेते हुए योग का प्रयोग। तो बीमारी आएगी जरूर, क्योंकि ये भी हमारे हिसाब किताब है प्रकृति के साथ जो हमें समाप्त करने हैं, लेकिन उस बीमारी में एक तो मेरी स्थिति कैसी है, जो मैंने कहा हमारी दादियों की स्थिति कैसी रहती है, कोई भी बीमारी, ये सब बड़े बड़े पेपर सबने पास किए हैं, और जितने महारथी माना विघन का रूप कैसा होगा। तो बाबा ने कहा कितना भी बड़ा पेपर आता है लेकिन लेकिन क्यों हो गया, आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ऐसा कैसे हो गया या ऐसा क्यों हो गया, आ गया लेकिन अब मुझे इसे कैसे पास करना है। सबसे बड़ी बात हमारी जो है, क्योंकि हम बाबा के गॉडली स्टूडेंट हैं और पूरे कल्प के लिए हम कमाई कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं अपना, तो उस अनुसार ही जितना हम आगे बढ़ते जाते हैं हमारे पेपर की स्टेज होती जाती है, तो हमारी शक्तियों का टेस्ट हो जाता है कि हमारी शक्तियां कितना, हम कितने मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति में पहुंचे हैं। तो मैं समझती हूं कि ये क्लियर हो ही गया है कि हम कैसे अपने विघ्नों को पार करें, और वो विघ्नों को पार करके हम निश्चय बुद्धि विजयी बने, बाबा के विजयी रतन बन करके हम फुल, जैसे कि फाइनल पेपर में केवल हमें पास नहीं होना है लेकिन पूरा लक्ष्य रख करके हम पास विद ऑनर हों। ओम शांति।
Om Shanti. So, thank you. And thank you के साथ हमारे पास होता है once again, once more. नहीं, हम आपसे फिर मिलना चाहेंगे. बहुत बाबा कहता है, बाबा के एक एक रतन अनमोल रतन है, और मधुबन यज्ञ भूमि में रहते हैं, तो हमारी ऐसी बहनों का बहुत बहुत थैंक्स है। ओम शांति।